पीबीसी इंडिया बोल 30 नवंबर दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्यों फेल हुई, क्यों सत्ता के करीब आकर भी बीजेपी सत्ता से दूर हो गई, कब कहां किससे क्या चूक हुई और क्या बीजेपी का नेतृत्व महाराष्ट्र के घटनाक्रम से कुछ सबक लेगा, यही है आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। महाराष्ट्र विधानसभा में आज उद्धव ठाकरे सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। सरकार के पक्ष में 169 विधायकों ने वोट दिया तो वहीं विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इसकी वजह यह रही कि बीजेपी ने वोटिंग से पहले सदन से वॉकआउट कर दिया था। इस दौरान चार विधायक तटस्थ रहे, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और AIMIM के विधायक शामिल हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सदन की पूरी कार्यवाही को ही संविधान के खिलाफ बताया है।
आज जो हमारे सभागृह का कामकाज चला, ये संपूर्ण कार्यावली संविधान के अनुरूप नहीं थी। जो संविधान के अनुरूप विधानसभा के नियम बनाए हैं, उन नियमों को ताक पर रखकर ये सारी कार्रवाई की गई।
ये थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ कथित तौर पर हुए यौन उत्पीड़न और फिर उनका जला हुआ शव मिलने की घटना के बाद लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में इस घटना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों ने तेलंगाना पुलिस और सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया है। लंदन स्थित लंदन ब्रिज पर शुक्रवार को चाकू से हमला कर दो लोगों की हत्या करने वाले शख्स की पहचान उस्मान खान के तौर पर हुई है। वो एक पूर्व कैदी थे जिन्हें आतंकवाद के एक अपराध में दोषी ठहराया गया था। उस्मान खान को साल 2012 में आतंकवादी गतिविधियों का दोषी पाया गया था और उन्हें 16 साल की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल उन्हें जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया था। अब कई लोग उस्मान खान को दी गई जमानत की आलोचना कर रहे हैं। एक वकील जेरेमी ब्रायर ने इस संबंध में बताया कि उनकी जमानत नियमों के तहत ही हुई थी।
I'm not saying there's no checking at all in all circumstances, but the general rule is that a determinate
मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी भी तरह की कोई जांच पड़ताल ही नहीं हुई, लेकिन सामान्य नियम यह है कि कुल मिली सजा का आधा हिस्सा कस्टडी में बिताना होता है, जबकि आधा हिस्सा पुलिस को अपनी जानकारी साझा करते हुए समाज के साथ बिताना होता है। ये थे एक वकील जेरेमी ब्रायर के शब्द। चीन में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत इंटरनेट का प्रयोग करने से पहले लोगों को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर में डेटा जमा करना होगा। इसके जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले शख्स की पहचान उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र से की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस नियम से लोगों को साइबर हमलों से बचने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक्स के जानकार डॉक्टर स्टीफन हारे मानते हैं कि यह तकनीक जल्द ही ब्रिटेन में भी इस्तेमाल हो सकती है।
I'm not sure there'd be as much of an uproar here in the United Kingdom as you might think, given that facial recognition technology is used so ubiquitously.
मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन ब्रिटेन में भी यह मांग जोरों से उठ रही है कि चेहरे की पहचान वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए। कुछ जगह पुलिस ने इसका प्रयोग भी किया है। आने वाले वक्त में यह और ज्यादा बढ़ेगा। ये थे बायोमेट्रिक विशेषज्ञ डॉक्टर स्टीफन हारे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री अदेल अब्देल महदी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर चर्चा करने के लिए इराक में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो सिर्फ इस्तीफे से संतुष्ट नहीं होने वाले, उन्हें इराक की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव चाहिए। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया है कि पुलिस ने ताइवान और बेलिस से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही लोग हांगकांग में जारी प्रदर्शनों में शामिल बताए जा रहे हैं। चीन की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए हैं कि हांगकांग में चल रहे प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत पेश नहीं किए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार,
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811-7000 और 1811-7001। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। साल 2019 की बड़ी राजनीतिक घटनाओं का जब भी जिक्र होगा, महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम उसमें ज़रूर शामिल होगा। वजह यह है कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने बीजेपी के विजय रथ को न केवल रोका, बल्कि विपक्षी दलों को एकजुट होने का सुनहरा मौका भी दिया। विपक्षी दलों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और महाराष्ट्र में सरकार बनाकर ही दम लिया। बीजेपी की रणनीति क्यों फेल हुई और क्या बीजेपी नेतृत्व इससे कुछ सबक लेगा? बीबीसी इंडिया बोल में इस चर्चा में श्रोताओं को शामिल करेंगे कुछ ही देर के बाद। उससे पहले मैं यहाँ स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह की ओर मुखातिब हो रहा हूँ। प्रदीप जी, आप बताइए, महाराष्ट्र में बीजेपी का कमल खिलकर भी मुरझा गया, क्यों?
उसका मुझे तो एक ही कारण नज़र आता है, अगर मुख्य रूप से कहें। कारण वैसे बहुत से हैं, लेकिन एक, सत्ता के लिए उतावलापन। बीजेपी की जो स्थिति थी चुनाव नतीजे आने के बाद, उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। अलायंस जो शिवसेना के साथ उसका था, उसको बहुमत मिला था, जनादेश मिला था। शिवसेना ने अपनी शर्तें मनवाने की ज़िद पर अलायंस तोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। ऐसे में बीजेपी ने घोषणा की कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और वो विपक्ष में बैठेगी। इसका सब लोगों ने स्वागत किया। सब लोगों से मेरा मतलब है जितने राजनीतिक हलके में जो राजनीति के जानकार हैं, जो राजनीति को नज़दीक से देखते हैं, उन सबको लगा कि एक सैद्धांतिक रुख अपनाया है बीजेपी ने, जो उसे पार्टी विद द डिफरेंस का जो उसका दावा है उस पर वो खरी उतरती है। लेकिन कुछ ही दिन में उसको लगा कि जबकि तीनों पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी, अलायंस उनका बन जाएगा, सरकार बन जाएगी, तो उसका धीरज ख़त्म हो गया। और वो धीरज ख़त्म हुआ, उसके साथ और भी बहुत कुछ ख़त्म हो गया। उनकी प्रतिष्ठा चली गई पूर्व मुख्यमंत्री की। 80 घंटे के मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने जो 5 साल में अर्जित किया था, जो प्रतिष्ठा, जो छवि, वो सब चली गई। बीजेपी ने जो 5 साल में अर्जित किया था कि वो राजनीतिक प्रबंधन के में महारत हासिल है उनको और वो किसी भी स्थिति में सरकार बना सकते हैं, वो उनका मुगालता जो है गलत साबित हुआ, वो भ्रम टूट गया।
राजनीतिक प्रबंधन में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की भूमिका पर भी हम चर्चा करेंगे आगे कार्यक्रम में। उससे पहले शीशे के उस पार बैठकर कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे राजेश चौहान इशारा कर रहे हैं कि टेलीफोन बज रहे हैं स्टूडियो में और तीन तीन श्रोता एक के बाद एक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। सबसे पहले श्रोता कौन है आज हमारे साथ?
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
जी, मेरा नाम रिया है, दिल्ली से बात कर रही हूँ। महाराष्ट्र के ऊपर मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए थे उससे ये तो साफ था कि जनादेश बीजेपी और शिवसेना को मिला था, लेकिन जब शिवसेना ने पहले सरकार बनाने से मना कर दिया, वो पीछे हट गई, तो बीजेपी ने खुद सरकार बनाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए? फिर बीजेपी ने कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत को भी अनदेखा किया, उसने जमीनी हकीकत के साथ साथ एनसीपी को भी कम आंका। और फिर मेरा मानना है कि उसने जो गलती की वो ये थी कि चुनाव से पहले वो बीजेपी अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, और जब अजीत पवार उसके पास आते हैं एक चिट्ठी लेकर जिसपे विधायकों के साइन हैं और वो कहते हैं कि उनके पास विधायक हैं, तो वो बिना पुख्ता किए उन पर विश्वास कर लेती है कि हाँ इनके पास विधायक हैं, वो क्यों नहीं उस पर चर्चा करती है कि उनके पास विधायक हैं या नहीं? और फिर ऐसा भी लगता है कि बीजेपी ने खुद इन तीन दलों को मौका दिया कि वे एकजुट हों और बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए।
बहुत शुक्रिया हमारी पहली श्रोता रिया दिल्ली से। अगले श्रोता को भी लगे हाथ कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम भैया जी चांद बाबू है, मैं मीरगंज कस्बे का छोटा सा रहने वाला हूँ, जिला बरेली यूपी से।
बहुत स्वागत है आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बीबीसी पूरे स्टाफ का मेरा मेरे परिवार की ओर से आपका मैंने 8 मिनट इंतजार किया होल्ड पर, या क्या पता फिर आपसे मौका मिलता नहीं मिलता।
अब मौका आपको मिल गया है, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज आप।
मेरा कहना सर ये है कि आपने सवाल लिखा था क्या नाकाम साबित हुई बीजेपी महाराष्ट्र में या कोई सीख लेगी।
जी
तो मेरा मानना है जैसे बीबीसी पूरी दुनिया में सुना जाता है आपको सर, आपके चैनल को, एक सत्य दिखाते हैं और एक आप सच्चाई दिखाते हैं, तो आप कामयाब हैं पूरी दुनिया में, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में ही नहीं पूरी दुनिया में नाकामयाब साबित हो गई हैदराबाद वाला जो एक इतना बड़ा कांड हुआ है।
मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा यहाँ पर कि हम मुद्दे से ना भटकें तो अच्छा होगा, हम चर्चा को उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे जो आज विषय तय है। आपको लगता है कि बीजेपी रणनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में नाकाम हुई है, और यदि हुई है तो उसकी क्या वजह देखते हैं आप?
उसकी वजह ये है ये लोग जो हैं काम जो है ईमानदारी से नहीं करते। अगर ये ईमानदारी से करते तो आज जनता का इनका भरोसा नहीं होता, अब इन पे से जनता का भरोसा उठता चला जा रहा है क्योंकि ये अब धोखा देते चले आ रहे हैं जनता को, ये मेरा कहना है।
बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अगले श्रोता के पास जाने से पहले हम लौट रहे हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं, क्या बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन करके कोई चूक की, कोई भूल की जिसका खामियाजा उसको अंततः इस तरह से भुगतना पड़ा?
इस पूरे घटनाक्रम में महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो मुझे लगता है कि पहली गलती बीजेपी की वही थी शिवसेना के साथ गठबंधन करना। जो पार्टी आपको पिछले 5 साल से लगातार गाली देती रही हो, आलोचना करती रही हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी आक्षेप और टिप्पणी करती रही हो, उसके साथ आप अलायंस में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो आपका मॉरल जो है वो, आपका जो नैतिक बल है वो अपने आप कम हो जाता है कि जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है उसके साथ आप अलायंस कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कोई कमजोरी है इस वजह से अलायंस कर रहे हैं। दूसरी गलती की चुनाव के दौरान ईडी का समन शरद पवार को भेजकर 2014 में बीजेपी को की सरकार को विश्वास मत में बचाया था एनसीपी ने, और वो जो ईडी का समन था उसने दो काम किए, एक मराठाओं में एक संदेश दिया कि हमारे नेता पर हमला हो रहा है, वो एकजुट हो गए। मेरा मानना है कि उससे कम से कम 10-15 सीटों पर असर पड़ा बीजेपी की, और शरद पवार ताकतवर नेता के रूप में उभरे। तो ये दो गलतियां की, उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव के बाद जब शिवसेना साथ छोड़ने को तैयार हुई तो एनसीपी के दरवाजे बंद मिले, और एनसीपी के दरवाजे बंद मिले, जो दरवाज़ा खुला, बल्कि कहें खिड़की खुली अजीत पवार की, वो इतनी इस तरह की थी कि जिसको बीजेपी को, आपको याद होगा कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि जोड़ तोड़ से अगर सरकार बने तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो बीजेपी को भी ये स्टैंड होना चाहिए था, यही अजीत पवार को, कि जिस पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है उसके साथ आप सरकार बनाकर क्या संदेश देना चाहते। तो ये मुझे लगता है तीन बड़ी गलतियां थी।
अजीत पवार की भूमिका से पहले शिवसेना की ही बात करें जो जिसके साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, क्या बीजेपी के रणनीतिकार इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि शिवसेना के कमान से निकले तीर इतने पैने साबित होंगे कि गठबंधन की रस्सी को ही तार तार कर देंगे?
हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अंदाज़ा नहीं लगा पाए। उनको लगा कि जैसे पिछले 5 साल से ये हमारे खिलाफ बोलते रहे, आलोचना करते रहे, लेकिन बीएमसी में हमारे साथ रहे, राज्य सरकार में रहे, केंद्र सरकार में रहे, अब भी बोल रहे हैं, ये बार्गेनिंग के लिए बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा चाहिए इनको, विभाग कुछ अपनी पसंद के चाहिए, उसके लिए ये सौदेबाजी कर रहे हैं, और कुछ दिन में वापस लौट आएंगे जैसे पिछली बार हुआ था। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं लगा कि शिवसेना इस बार अपमानित महसूस कर रही थी, ये इस जो किया है उद्धव ठाकरे ने उससे उनको बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं हुआ है।
और चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना को बड़े भाई की भूमिका में आने का मौका मिल गया?
देखिए जो हुआ उसकी भूमिका, या कहें उसकी आधारशिला चुनाव से पहले रख दी गई थी। जब सीटों के तालमेल की बात हुई तो बीजेपी ने साफ साफ मना कर दिया कि जो लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला था 50-50 का, वो उसको नहीं मानती। नतीजा ये हुआ, बीजेपी 164 सीटों पर लड़ी और शिवसेना 124 पर। वो अपमान भूलने को तैयार नहीं हुई शिवसेना, 5 साल से एक पहले ही एक अपमान को झेल रही थी कि बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गई। अब इस बार जो स्नब मिला, उसको जो कहें कि दुत्कारा गया बीजेपी की ओर से, उसको व्यक्तिगत रूप से लिया उद्धव ठाकरे ने।
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस समय कौन हमसे जुड़ रहा है?
मैं रामपुर गार्डन बरेली उत्तर प्रदेश से कुमारी प्रियदर्शनी रानी बोल रही हूँ, दृष्टि बाधित।
बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आपसे हम गुजारिश करेंगे कि जो रेडियो सेट आपके पीछे ऑन है उसे कृपया बंद कर दें, ताकि आपकी आवाज जो गूंज रही है और हमारी आवाज गूंज रही है वो गूंजना बंद हो जाए।
जी धन्यवाद।
इसको बंद करने के बाद अपनी बात रखें।
जी मैं ये कहना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में जो हुआ उससे बीजेपी को सबक लेना चाहिए, और बीजेपी ने ये इस बात साबित कर दी कि वो सत्ता के लिए कितनी भूखी थी, किस तरह वो सरकार बनाने के लिए आगे आई। वो 80 घंटे के मुख्यमंत्री बन के उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और उन्होंने ये बात भी साबित कर दी कि जिन चीज़ों के लिए वो कांग्रेस की आलोचना करते हैं वो चीज़ें ही बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस और बीजेपी में फिर अंतर ही क्या रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। जब वो एक भ्रष्टाचारी नेता का हाथ पकड़ के सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए, और ऐसी सरकार जो कि 80 घंटे के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा, ये बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया, जिससे पब्लिक को ये बात मालूम पड़ गई कि कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, और कांग्रेस से ज्यादा भूखी है बीजेपी सत्ता के लिए।
बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। प्रदीप जी, जैसा कि ये श्रोता कह रही थी, क्या ये वाकई एक बहुत अच्छा मौका नहीं था बीजेपी के लिए, पार्टी विद डिफरेंस, अपने आप को साबित करने के लिए? 105 सीटें होने के बावजूद बीजेपी यदि कहती जो उसने कहा भी था शुरू में, और विपक्ष में ही बैठने का फैसला करती, तो वाकई एक नज़ीर पेश करती अपने आप में।
बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अवसर था बीजेपी के सामने जो वो चूक गई, और उसके सामने ये भी अवसर था कि जो ये अलायंस बन रहा है उसके अंतर विरोधों को उजागर करती, और ये सरकार ज़्यादा समय तक शायद न चल पाती। लेकिन देखिए, बीजेपी के लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि ये सारी नैतिकता और सिद्धांत की अपेक्षा हमसे ही क्यों? तो उसका जवाब ये है कि साहब, आप ही दावा करते हैं कि हम सबसे नैतिक हैं राजनीति में, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं, हम पार्टी विद द डिफरेंस हैं। जिस दिन आप ये दावा करना बंद कर देंगे, लोग आपसे अपेक्षा बंद कर देंगे। तो जो आपने किया 80 घंटे में अजीत पवार के साथ, उसमें और कांग्रेस या किसी और पार्टी में और आप में क्या डिफरेंस रह गया?
प्रदीप जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगले श्रोता को भी कार्यक्रम में शामिल करते चलते हैं। कौन है इस समय हमारे साथ?
नमस्कार सर।
जी नमस्ते
सर, मैं गुजरात से मोरबी के पास छोटा सा गांव है आमरण, बीके परमार मेरा नाम है, आपको 50 साल से सुनता हूँ।
स्वागत है परमार साहब आपका।
छोटा सा गांव है हमारा।
जी जी,
नैतिकता तो पुस्तकों में रह गई, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सका, नेतृत्व फेल हो गया बीजेपी का, संज्ञान जरूर लेंगे। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय सॉफ्ट कॉर्नर, शिवसेना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं थी, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग तो ना हो सका। सर, अजीत पवार साहब इसलिए गए थे कि 6 मास के लिए राष्ट्रपति शासन न हो जाए, 6 मास क्या करेंगे सब, इसलिए ये सब हुआ। और शपथ बंधारण के सब लेते हैं, संविधान के सब लेते हैं, आए दिन तोड़ते हैं। क्यों संविधान क्यों तोड़ते हैं? डेमोक्रेसी काम क्यों नहीं होता? सोनी साहब
जी, जी
सिंह साहब को हमारे मेरा नमस्कार भी, मैं भूल गया, माफी चाहता हूँ।
धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।
सर बीजेपी नेतृत्व सबक तो जरूर लेगा, अभी यह नेतृत्व के पास टाइम है।
अच्छा परमार साहब, इस महाराष्ट्र के नतीजे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की भूमिका कैसे देखते हैं?
भूमिका तो सबकी बराबर की ही है, गलत तो इनसे हो गए, आप भूल हो गई।
बहुत शुक्रिया।
काम करेंगे तो कामयाब हो सकेंगे, वो भी कामयाब हो सकेंगे।
बहुत शुक्रिया मोरबी से हमारे श्रोता, नियमित श्रोता कहना चाहिए इन्हें परमार साहब के बाद। अगले श्रोता कौन है हमारे साथ? हेलो
हेलो, नमस्कार
जी। नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
मैं विक्रम काशनिया जिला जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर।
जी बहुत स्वागत है आपका।
जैसा कि सर ये अभी बताया कि सर मतलब शिवसेना नतीजे आने के बाद पता चला कि जनादेश बीजेपी और शिवसेना को मिला था, लेकिन जब शिवसेना पीछे हट गई तो बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया, सीधा राज्यपाल से कह दिया कि सरकार बनने में स्थिति नहीं है। इसके बाद बीजेपी को लेकर प्रदेश में महाराष्ट्र में एक सहानुभूति थी कि पार्टी का व्यवहार सम्मानजनक है, लेकिन अजीत पवार के साथ मिलकर जो बीजेपी ने किया उसे वह सहानुभूति खो दी और प्रतिष्ठा भी खो दी, क्योंकि अजीत पवार पर पिछले 5 सालों से भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था और जांच शुरू हुई थी। इसके लिए बीजेपी ने अजीत पवार पर भरोसा किया, ये भी एक इनके गठबंधन टूटने का एक बड़ा कारण था सरकार न बनने का।
बहुत अजीत पवार और बहुत शुक्रिया। अगले श्रोता के पास जाने से पहले प्रदीप जी, अजीत पवार का जिक्र बार बार हो रहा है, अजीत पवार को अपने साथ मिलाकर साथ लेकर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, कुछ भरोसे में लिया गया होगा दोनों ने एक दूसरे को, यहाँ पर समीकरणों को समझने में कहाँ चूक हो गई?
नहीं देखिए, मुझे लगता है सबको लग रहा था जब ये सरकार बनी, शपथ रविवार की सुबह अचानक हो गई, सबने देखा कि सरकार बन गई, एक राष्ट्रपति शासन हट गया रातों रात, तो लगा कि कुछ एश्योरेंस तो दिया होगा अजीत पवार ने, ऐसे ही तो नहीं आ गए होंगे। तो लेकिन बाद में अब हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ गंभीर था नहीं लगता है, क्योंकि वो जो सूची लेकर आए वो भी कहना चाहिए धोखे से लेकर आए, वो वास्तविक सूची नहीं थी जो बीजेपी को समर्थन देने के लिए 54 विधायकों ने जिस पर दस्तखत किए हों। फिर उन्होंने ऐसा लगता है कि अजीत पवार ने एनसीपी के अंदर अपनी ताकत को कुछ ज़्यादा आंका, उनको लगा कि हम जहां जाएंगे वहां हमारे साथ विधायकों का एक बड़ा हिस्सा आएगा, ये वो 2010 में कर चुके थे। इस 2010 में इसी धमकी के आधार पर कि तोड़ दूंगा पार्टी, शरद पवार को मजबूर किया था छगन भुजबल को हटाकर खुद को डिप्टी सीएम बनाने के लिए, लेकिन इस बार उनका दांव काम नहीं आया।
थोड़ा सा भाषा को बदलते हैं, यदि क्रिकेट की भाषा में बात करें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र की उछाल भरी सियासी पिच पर अमित शाह की गिल्लियाँ एकदम से बिखर गईं। तो क्या अमित शाह की बल्लेबाजी ख़राब थी या ये शरद पवार की गेंदबाजी का कमाल था कि बल्लेबाज चारों खाने चित हो गया?
देखिए मुझे तो लगता है कि इसमें शरद पवार की बल्लेबाजी बेहतर थी,
गेंदबाजी
बेहतर थी। शरद पवार को बीजेपी ने, अमित शाह ने अंडर एस्टिमेट किया, उनकी ताकत का उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि शरद पवार जब लड़ने पर आ जाएंगे। शरद पवार की छवि एक व्यापारी राजनेता की है जो हर समय सौदा करने के लिए तैयार है, तो उससे सबको लगता है कि कभी भी सौदा हो सकता है, यही मुझे लगता है अमित शाह को लगा होगा, इसी वजह से उन्होंने ये दांव खेला, वरना इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था। अगर राष्ट्रपति शासन लगने से पहले ये हुआ होता तो ये सारा ठीकरा देवेंद्र फडणवीस के सर पे फूटता।
उम्र और तजुर्बे की बात करें तो शरद पवार 20 हैं, इसके बावजूद यदि अमित शाह और नरेंद्र मोदी उन्हें कम करके आंकते हैं तो इसकी क्या वजह हो सकती है?
देखिए एक तो कुछ ऐसा लगता है कि निजी तौर पर कुछ गड़बड़ हुआ है। आप याद करें प्रधानमंत्री पहले कई बार कह चुके हैं जब वो मुख्यमंत्री थे तो शरद पवार से सलाह लेते
हैं, उन्होंने कई दफ़े तारीफ की है,
तारीफ की है उनकी, उनकी राजनीतिक समझ की, प्रशासनिक क्षमता की, इन सब चीज़ों की। लेकिन इस बीच में कुछ पिछले 6-8 महीने में गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है निजी रूप से ये पता नहीं, लेकिन दोनों के संबंध ठंडे हो गए और उसके बाद उनमें किस तरह की तल्खी आई वो ईडी का नोटिस बताता है, उससे लगा कि दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए और ये गलती कम से कम चुनाव से पहले बीजेपी को नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया, और ये आकलन अमित शाह का गलत साबित हुआ।
प्रदीप जी मैं आपको यहीं रोकूंगा, कम से कम 2 श्रोता बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं टोल फ्री नंबर्स पर, एक एक करके हम बात करेंगे। कौन है इस समय हमारे साथ?
सर मैं यज्ञेश पाठक बोल रहा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ।
बहुत स्वागत है पाठक जी आपका।
हाँ नमस्कार आपको। और
हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
जी
जी
जी मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में दो जगह रणनीतिक भूल हुई है भारतीय जनता पार्टी से। पहला तो चुनाव के स्तर पे ये हुआ कि जो जनता के लोकल मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाई, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही और यही अभी झारखंड में भी देखा जा रहा है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल हुई वो ये थी कि शरद पवार के चाल को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई। ये साफ झलक रहा है कि जो अजीत पवार इतना बड़ा धोखा दिया एनसीपी को, वो वापस से आ गया है और वो सुप्रिया सुले उनसे खुलेआम गले मिल रही हैं, स्वागत कर रही हैं। तो ये साफ झलकता है कि ये शरद पवार की मिलीभगत थी और बीजेपी जाल में फंस गई। अब इससे नुकसान कहां पर हुआ और ये चाल क्यों चला गया था शरद पवार की ओर से, तो मेरा ये मानना है कि वो इसलिए क्योंकि शिवसेना का और कांग्रेस का जो छवि था वो खराब हो रहा था, तो वो चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का भी छवि जो है सही न रहे, क्योंकि यहाँ पर दूध के धुले नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता। तो यह चाल चलकर भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। और एक आखिरी लाइन में ये कहना चाहूंगा कि ये कहना कि जनादेश का ये निरादर हुआ है, कहना मेरे अनुसार गलत होगा, क्योंकि जिस दुष्यंत सिंह चौटाला को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत पड़ा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना ली, तो यही काम यहां शिवसेना की। तो ये कहना कि हम सही हैं हरियाणा पे और यहां शिवसेना गलत, बिल्कुल ही न्याय उचित नहीं है।
बहुत शुक्रिया यज्ञेश पाठक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हमसे जुड़ रहे थे। एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
हेलो सर। हेलो
जी जी।
हेलो
जी जी, अपना परिचय दें।
सर मैं जेंट के से मोहम्मद शफी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बोल रहा हूँ। सर बात यह है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि शिवसेना इसका दायना बाजू और पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना को मानने वाले बहुत से लोग थे। अब जो है बीजेपी ने इतनी बड़ी गलती की, एक तो ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार वाला आदमी जो था वो सेकंड चीफ मिनिस्टर बनाया, और इनकी जो है तमाम छवि जो है आते वक्त में शिवसेना की वजह से टोटल हिंदुस्तान में डाउन हो जाएगी और ये बिल्कुल जो है इनकी पार्टी मिसमार हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना को मानने वाले जम्मू में भी जम्मू तक लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना के मारने वाले।
बहुत शुक्रिया शफी साहब, आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई। हम थोड़ा सा अपने वापस प्रदीप जी के पास आएंगे। प्रदीप जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इनकी बात में ही अपनी बात जोड़कर मैं ये कह रहा हूँ कि दो साल पहले तक की बात है जब बीजेपी शासित राज्यों की संख्या 18 के आसपास थी, लेकिन दो साल के भीतर राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र, आकार में बहुत बड़े राज्य हैं ये, जहाँ बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। क्या वाकई ये कहना ठीक होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के शिखर से उतरने की शुरुआत हो गई है?
देखिए, राजनीति में भी न्यूटन का तीसरा सिद्धांत काम करता है कि हर प्रतिक्रिया के खिलाफ उसी मात्रा में विरोध में जो है प्रतिक्रिया होती है। जब भी किसी पार्टी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका वर्चस्व हो रहा हो, तो उसके विरोधी जो हैं उनके लिए अस्तित्व का संकट हो जाता है, वो एक हो जाते हैं। इसीलिए देश में लंबे समय तक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति चली। आज बीजेपी उसी स्थिति में पहुंच गई, तो उसके जो विरोधी हैं अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनमें एका ज़्यादा होगा, साथ ज़्यादा आएंगे। ये चुनौती किसी भी बड़ी पार्टी के लिए होती है, बीजेपी के लिए भी है। कांग्रेस इससे लंबे समय तक निपटती रही और आखिर में हार गई। बीजेपी का क्या होगा भविष्य बताए।
एक छोटा सा सवाल और है, कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो ऐसा क्या है जिसे बीजेपी अब बहुत फूक फूक कर कदम रखेगी?
देखिए, उम्मीद तो यही की जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिएगा, लेकिन कर्नाटक में जले थे, महाराष्ट्र में फिर जले, तो अब ये उनके ऊपर है कि सबक लेंगे या फिर गलती को दोहराएंगे।
बहुत शुक्रिया। इसी के साथ घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमें अपनी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी भागीदारी से इस चर्चा को सार्थक बनाया, और जिन श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके उनसे हमेशा की तरह आज भी माफ़ी चाहूँगा। अगले हफ्ते फिर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा लेकर इंडिया बोल में हम हाजिर होंगे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।